आचार्य प्रवर्धन। रात्रि तीन पहर व्यतीत हो चुकी थी। दिन भर आशंकित आतंकित और व्यग्र रहकर सागर नगरी भी अंधकार मौन और निंद्रा के आच्छादन में विश्राम पा रही थी। केवल नगर प्राचीर और गोपुरों से प्रतिहारी सैनिकों की सावधान रहने की ललकारें कुछ कुछ पलों के अंतर से अंधकार से घनीभूत मौन को स्पंदित कर रही थी। पथों और वीथियों पर सहस्त्र मौन परंतु सतर्क सैनिक पहरा दे रहे थे। मध्यरात्रि के पश्चात किसी अज्ञात कुलशील के अथवा संदिग्ध अवस्था में किसी भी व्यक्ति के पाए जाने पर उसे राजपुरुषों के सम्मुख उपस्थित किए जाने के आदेश थे। इस व्यवस्था के कारण सागल के मद्यपन्नी और वेश्याओं की वीथियों में अर्धरात्रि के एक पहर पश्चात तक रहने वाला कोलाहल व्यापार संध्या से ही समाप्त हो जाता। नगर प्राचीर के अतिरिक्त कहीं प्रकाश और आहट थी तो गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के प्रसाद के सिंह द्वार पर अलसाए सारथी असुरक्षक और अनुचर जमाहिया लेकर निरर्थक वार्तालाप से निंद्रा का प्रतिकार कर रहे थे। शांत अशोक सिंह द्वार के सम्मुख शिला मंदिर भूमि पर अपने सुम पटक पटक कर शांति और असंतोष प्रकट कर रहे थे। अनेक अभ्यागत रात्रि का प्रथम पहर बीतने पर और कुछ दूसरे प्रहर के अंत में विदा हो चुके थे। अनुचरों और अशोक की दृष्टि प्रतीक्षा में बार बार सिंह द्वार की ओर जाकर निराश लौटाती। वे दिविधा में थे, उनके स्वामी उन्हें भूल गए या स्वयं अपने को ही भूल गए थे। इससे पूर्व भी अनेक बार कई प्रहर रात बीत जाने तक अनेक प्रसादों के सिंह द्वार पर उन्होंने अपने स्वामियों के लिए प्रतीक्षा की थी, परंतु यह अवसर और वातावरण भिन्न था। आज न नर्तकियों के पायल, न मृदंग की गमक, न गीत की लय, न अट्टहास, न कलरव, न मद्य और न खाद्य पदार्थों की सुगंध थी। उनकी सुध लेकर भीतर से किसी ने मद्य और मेरे के पात्र न भेजे। द्वार पर खड़े पांच सतर्क सशस्त्र प्रतिहारी अन्य समय की भांति केवल शोभा के लिए जानना पड़ते। प्रतिहारियों की आशंका में तत्परता सारथियों और अनुचरों की प्रतीक्षा को दुस्सह बना रही थी। सिंह द्वार की भांति आष्ठनागार के अलिंद में भी दीप दंडधारियों के स्थान पर सशस्त्र प्रहरी तत्पर थे। दीपों का प्रकाश केवल आष्ठनागार में ही था। अनेक अभ्यागतों से घिरे अत्यंत चिंतातुर आचार्य प्रवर्धन के समीप काष्ठमूर्ति के समान निश्चल ग्रीवा झुकाए आर्य रुद्रधीर बैठा था। उसके चारों ओर सामंत कार्तवीर, सामंत लक्ष्मण, श्रेष्ठी धर्मजीत, सर्थवाहक बलभद्र, महासामंत धर्मष्ट के पुत्र पंडित विष्णु शर्मा और पौत्र विनय शर्मा आदि भी वैसी ही चिंतातुर मुद्रा में उपधानों के सहारे प्रायः ग्रीवा झुकाए बैठे थे। आलिंद में प्रतिहारी ने रात्रि का तीसरा प्रहर समाप्त होने का घड़ियाल बजा दिया। घड़ियाल के स्वर से समय का विचार कर पंडित विष्णु शर्मा ने उपधान का आश्रय छोड़कर सामंत कर्तवीर को संबोधन किया। महासेनापति के सहसा जागरूक होकर परिषद का आह्वान करने और नगर में घोषणा कराने से जो आशंका हुई थी वह यो पूर्ण हुई। उन्होंने चिंता के से माथा झुकाए आचार्य की ओर दृष्टि की। आचार्य ने केवल एक दीर्घ निश्वास लिया। अन्य उपस्थित समाज भी विष्णु शर्मा की भांति उपधान छोड़कर मातमत प्रकट करने के लिए शरीर हिलाने डुलाने लगे। मुख से न कहने पर भी सभी ओर से विलंब के कारण चिंता प्रकट हो रही थी। अंतःपुर के कंचुकी ने सूचित किया, कुल देवियां पधार रही है। अभ्यागत देवियां अंतःपुर से आकर अपने संबंधी पुरुषों के समीप बैठ गई। जवाई रोकने के लिए स्थूल शरीर को सीधा कर सामंत कार्तवीर ने उत्तर दिया, वर्तमान परिस्थिति में प्रतीक्षा के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं। महासेनापति और धर्मष्ट केवल शिखंडी है। कुटिल नीति के यह मान सामंत ओक्रिस, इंद्रसेन और सारथी पृष्ठ के ही है। हमारे सभी बलाधिकृतों और सेनापतियों के स्थान पर अन्य बलाधिकृत और सेनापति पहले से नियत कर और घोषणा द्वारा जन को लुभा कर इन लोगों ने हमें पंगु कर दिया है। कुचक्र में पृष्ठ कौटिल्य का शिष्य है। प्रातः सारथी पुत्र भी निश्चय बलाधिकृत क्या सेनापति पर शोभायमान होगा। यह न्याय उसी की भूमिका है। प्रसंग के मध्य में विष्णु शर्मा ने रुद्रधीर को संबोधित किया, तात उचित यही होगा कि सूर्योदय से पूर्व ही तुम नगर द्वार पर पहुंचकर द्वार खुलते ही पूर्व दिशा का मार्ग ग्रहण करो। मेरा विचार है कि प्रवास का समय तुम अपने बाटुल गृह वल्का में ही पूर्ण करो। गण के दूसरे नगरों की यात्रा कर परिस्थिति जानो। कुछ पक्ष अथवा कुछ मास पश्चात ही इन हीन कुल नास्तिकों का दमन हो जाने से तुम्हारे सागर लौटाने का अवसर आ सकता है। भावों को संतत रखने के लिए दोनों हाथों की उंगलियां परस्पर बांधे ग्रीवा झुकाए आचार्य को अस्वीकृति से सिधराते देख विष्णु शर्मा चुप हो गए। ग्रीवा झुकाए ही आचार्य ने अवसाद से छीन स्वर में कहा, मेरा मत है कि दो सहस्त्र दिवस के दीर्घ समय का उपयोग आयुष्मान रुद्रधीर मगध की यात्रा द्वारा करे। मंत्र अभी कुछ समय तक पृष्ठ और उसके मलक्ष दल के कुचक्र में पीड़ित हो विवश रहेगा। ऐसी स्थिति में वल्का जैसी आरक्षित नगरी में आयुष्मान के किसी षड्यंत्र में फंस जाने पर हम कुछ जान भी ना पाएंगे। मेरा शरीर उदर रोग से अत्यंत जीर्ण हो रहा है। मेरी इच्छा है कि रुद्र मगध में द्विज सेनापति और अग्निमुख नीति के महर्षि पतंजलि से वर्णाश्रम के उद्धार के लिए दीक्षा ग्रहण करे। मंत्र सदा मलिक शासित न रहेगा, वे अधिक बोल न पाए। सृष्टि धर्मजीत पुनः उपधान का आश्रय लेकर बोला, तात धर्मस्थ ने अद्भुत न्याय किया है। मनुपर्व की घटना तो प्राय विस्मित हो चुकी थी। सामंत कर्तवीर ने आगे बढ़कर बोला, वही तो मैं कह रहा था। सामंत लक्ष्मण ने सृष्टि के मुख का प्रसंग लेकर कहा, यह मनुपर्व की घटना का परिणाम नहीं है, युद्ध काल की राजनीति है। इसके मूल में तात धर्मष्ट की मिलिंद कालीन शासन व्यवस्था में आस्था है। यवन गणपति में उनका विश्वास है, विशेषतः यह अनुशासन दंड है। मित्र गणपति की यह घोषणा कि मंद्र की संपूर्ण प्रजागण और न्याय के शासन के सम्मुख समान है, इसका प्रमाण है। यह जन को वश विष्णु शर्मा की ओर देख हुए मौन रह गए। विष्णु शर्मा अप्रतिभ नहीं हुए, वे बोले, नहीं, तात स्वयं अभिधर्म और मुनियों की कम्मनो द्विजभवती की धारणा का आदर करते, इस वृद्धावस्था में उनके विचारों का क्या हो। शार्टवाहक बलभद्र जवाहाई से फैलते मुख को हाथ से ढककर बोला, आयुष्मान के मगध जाने के संबंध में आचार्य का मत उचित है। मार्ग के सभी नगरों में मेरा परिचय है, सब प्रबंध हो जाएगा, आयुष्मान को यात्रा में कष्ट न होगा। मगध जाकर ही वे मंत्र की मुक्ति का उपाय कर सकेंगे। हमारी आशा केवल मंत्र अभिषक्त मगध सेनापति पुष्य मित्र है। आचार्य को पुनः ग्रीवा झुकाए सिर हिलाते देख सभी लोग मौन होकर उनकी ओर देखने लगे। द्विजसेनापति, उन्होंने कहा, समय की न्यूनता से इस समय हम उनसे सहायता नहीं पा सके। द्विजसेनापति के भरोसे प्रतीक्षा करना उचित न हुआ, समय निकल गया। सेनापति पुष्यमित्र की सहायता पाने के स्थान पर हम मलिक्षों के कुचक्र में फंस गए। सेनापति सूरसेन से रवि शर्मा को सैन्य दल भेजने का आदेश दे सकते थे, वे संभवतः दक्षिणापट की प्रतिद्वंदता में व्यग्र थे। उनकी दृष्टि में जम्मू द्वीप की सीमा संभवतः केवल सूरसेन ही है। मंद्र की रक्षा के लिए गणपति की नीति का परिणाम होगा कि कुलों की सत्ता का पराभव, कुलहीनों का उश्रृंखल स्वेच्छाचार, शासन की व्यवस्था से ही देश रक्षकहीन खेत के समान हो जाएगा। एक गहरा निश्वास लेकर, दृष्टि किसी और भी न कर, सभी को संबोधन कर आचार्य ने अभ्यागतों की सहानुभूति के लिए धन्यवाद देकर विलंब हो जाने के कारण अभ्यागतों से विश्राम के लिए अपने स्थानों पर घर लौट जाने पर की प्रार्थना की। वे विस्तर से उठ खड़े हुए, उनके अनुकरण में अभ्यागत और कुल स्त्रियां भी आसनों से उठ खड़ी हुई। मन की अधीरता के कारण कंठ और नेत्र आर्ण हो जाने से आचार्य मुख से कुछ न बोल सके, केवल बद्ध करों से अभ्यागतों की वंदना कर अंतःपुर के द्वार की ओर चले गए। रुद्रधीर के नेत्र आरक्त और मुख प्रश्न मूर्ति की भांति गंभीर था। गुरुजन को प्रणाम कर वे लोग खड़े रहे। कुल देवियों ने समय आगे बढ़कर उन्हें आशीर्वाद तिलक का मंगल सूचक नारियल भेंट की और एक एक स्वर्ण मुद्रा रुद्रधीर के सिर पर से निछावर कर पुरोहित को दान के लिए पात्र डाल दी। गुरुजन उन्हें दीर्घायु, सफल काम और यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर दीपनंदधारी दासी द्वारा दिखाए मार्ग से देवियों सहित सिंहद्वार की ओर चले गए। गुरुजन के प्रस्थान के पश्चात चारों मित्र आयुष्मान, सकृत, इंद्रदीप, विनय शर्मा और बलि जीत यथेष्ट विश्राम की मुद्रा में रुद्रधीर के चारों ओर से घेर कर बैठ गए। रुद्रधीर का अनुज वसुधीर ज्येष्ठ और ज्येष्ठ के मित्रों के प्रति आदर से एक ओर बैठा था। इंद्रदीप ने जवाहाई लेकर वसुधीर को आपानक के लिए संबोधन किया। रुद्रधीर कोहनी उपाधान पर टिका, हथेली पर माथा टिकाए था। धर्मस्थान से लौटकर रात्रि तीन पहर बीत जाने तक उसके मुख से एक शब्द न निकल पाया था। उसके मुख के शब्द मन में धड़कती हुई अपमान की प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए थे। धर्मस्थान से दासपुत्र के अपमान के लिए एक सहस्त्र दिवस का निर्वासन दंड सुनकर वह न्याय और शासन की मर्यादा भूल गया था। उसके नेत्र आरक्त हो गए थे और हाथ खड़क के लिए कटिबंध की ओर बढ़ गया, परंतु धर्मस्थान के अनुशासन के अनुसार धर्मस्थान की सीमा में राजपुरुषों के अतिरिक्त वादी प्रतिवादी अथवा इतर जन का सशस्त्र उपस्थित होना वर्जित था, इसलिए उसका हाथ शस्त्र न पा सका। मार्ग अवरुद्ध पाकर उसका क्षोभ और उत्तेजना उमड़ पड़ी। महावृद्ध महापंडित धर्मष्ट के सम्मुख अवज्ञा से सिर उठाकर धर्मष्ट के नेत्रों में देखकर उसने प्रश्न किया, क्या मंद्र के कुलगण का शासन दासों की प्रतिष्ठा के लिए है? हिमश्वेत समस्तों से आच्छादित धर्मष्ट का मुखमंडल युवक की दृष्टा से विचलित न हुआ। उत्तर में श्वेत समस्त्रु आच्छादित होते एक बार और हिले। गण परिषद संवाहक अग्रहार आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आयुष्मान रुद्रधीर को महाश्रेष्ठी पृष्ठ के पुत्र आयुष्मान पृथुसेन का सार्वजनिक अपमान करने के दंड स्वरूप धर्मस्थान से अनुशासित सागल नगर से एक सहस्त्र दिवस के निर्वासन दंड के अतिरिक्त मद्रगण के धर्मस्थान के अनुशासन की अवज्ञा करने के अपराध में मद्रगण का धर्मस्थान एक और सहस्त्र दिवस के लिए निर्वासन की दंड की आज्ञा देता है। धर्मस्थान का वातावरण स्तब्ध रह गया। धर्मस्थ ने पुनः आदेश दिया, गण परिषद संवाहक अग्रहार आचार्य प्रवर्धन के पद और कुल के सम्मान के विचार से एक रात्रि और एक दिवस का समय आयुष्मान रुद्रधीर को स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार करने के लिए दिया जाए। इसके अनंतर राजपुरुष आयुष्मान को बाधित करे। आयुष्मान, इंद्रदीप, सकृत, विनय शर्मा, बलजीत और अन्य अभिजात युवकों ने रुद्रधीर के धर्मस्थान से निकलते ही उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। युवक उसे बलात् सविका पर बैठा कर सविका को अपने कंधों पर आचार्य के प्रसाद तक ले गए। अपने वर्ण और कुल का अपमान सहकर धर्मस्थान से जीवित लौटाना रुद्रधीर के लिए मृत्यु पीड़ा से भी अधिक असह्य हुआ। वह निरंतर आत्महत्या और सुरेन की हत्या की ही बात सोचता रहा। सुरा को दो चषक पीकर रुद्रधीर का हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर इंद्रदीप ने कहा, मित्र, मनुष्य देवताओं की इच्छा का दास है। देवता अपने प्रयोजन से मनुष्य की मति से परे कार्य करते हैं। शूद्र के आदर के लिए ब्राह्मण को निर्वासन का यह दंड ही मंत्र की मुक्ति का सूत्र होगा। सुरा का एक और चषक हाथ में लेकर उसने कहा, दुस्सेनापति आचार्य के संदेश का महत्व नहीं जान पाए। जिस दिन तुम स्वयं मलिच्छ मर्दनी मगर वाहनी की सम्मुख वर्णाश्रम की ध्वजा धारण कर लौटोगे, उस दिन मंत्र के संपूर्ण मलिच्छ अहंकारी शूद्र यज्ञ के लिए बलि पशु बनकर अपने अपराध का मार्जन करेंगे। सुरापात्र सिर से ऊपर उठा, उसने कहा, अपने कुल की शपथ से कहता हूँ, मित्र के अपमान का प्रतिशोध संपूर्ण पृष्ठवंश को अग्नि समर्पण करके करूंगा। देवता की प्रतिज्ञा के साक्षी रहे। दूसरों ने भी सुरा के पूर्ण चषक आधार से उठाकर होठों से लगाए। सकृत ने रुद्रधीर के कंधे से शरीर सटाकर रहस्य के स्वर में कहा, मित्रों, पुष्यमित्र की प्रतीक्षा में एक अवसर खोया, इस प्रतीक्षा में एक युग बीता जा सकता है। मेरा विचार है कि मित्र रुद्र मगन न जाकर डाड़ हो जाए, केंद्रस्य मित्रता स्थापित करे। केंद्रस्य साम्राज्य विस्तार का अभिलाषी है, उससे संधि कर यदि हम उससे आधा देश मतकर वर्णाश्रम पद्धति के रक्षक पौरव वंश के राज्य की स्थापना कर पाए तो कालांतर में शेष देश को भी पुनः प्राप्त कर सकेंगे। महामती चाणक्य का मत है, संपूर्ण की हानि का आशंका देखे तो बुद्धिमान आधे को त्याग कर आधे की ही रक्षा करे। अन्वेषता त्याग कर रुद्रधीर ने सकृत को संबोधन किया, क्या कहते हो सखा सकृत, विजयी केंद्रस हमारी अनुमति से अपने साम्राज्य की व्यवस्था करेगा? मंत्र को एक बार हथिया कर मंत्र में पौरव वंश अथवा द्विज वंश के स्वतंत्र राज्य की संभावना का बीज नष्ट कर देगा। विनय शर्मा ने अपने हाथ का रिक्त चषक आधार पर रखकर समर्थन किया, मित्र का विचार सत्य है, यवन केंद्रस को यदि सहानुभूति होती तो मुनियों से वे उस मलिक्ष को मिलिंद की भांति धर्मराज का पद देकर सम्मानित करेंगे और वह उन अनाधिकारियों को प्रश्रय देगा। पुनः यज्ञ धर्म और वर्णाश्रम का ह्रास होगा, यवनों से वर्णाश्रम की प्रतिद्वंदता अनिवार्य है, हमारे लिए केवल पुष्यमित्र ही आशा का आधार है। अवसाद का शैथिल्य वश कर रुद्रधीर बोला, गुरुजन की नीति से हम लोगों ने अवसर को स्वयं खो दिया। केंद्रस के सम्मुख शैथिल्य दिखाकर गण को निर्बल बनाकर शासन शक्ति हाथ में लेने की सामंत सर्वार्थ की नीति से हमने उनका विश्वास और आदर खो दिया। यदि वृद्ध गणपति को समय पर शस्त्र शक्ति द्वारा अपतृष्ट कर सैन्य बल का नियंत्रण हाथ में ले लिया होता। सबको मौन देखकर प्रसंग बदल कर कहा, अष्टुमित्र, पितृव्य पंडित का विचार ठीक है, मार्ग और वीथियों में जन की दृष्टि का सामना करने की अपेक्षा मैं सूर्योदय से पूर्व ही नगर द्वार पर पहुंच जाऊं। जितना समय बीतेगा समाचार फैलने से नगर त्याग का कार्य उतना ही पीड़ाजनक हो जाएगा। अपमान की मृत्यु वेदना सहकर भी मैं केवल इसी आशा से जीवित हूं कि किसी दिन कुल वर्ण अपने इस अपमान का प्रतिशोध कर सकूंगा। रुद्रधीर ग्रीवा झुकाकर मौन हो गया। संपूर्ण रात्रि पल भर भी निद्रा न पाने के कारण सभी क्लांत थे, केवल रुद्रधीर और वसुधीर के नेत्रों में निद्रा का चिन्ह न था। सकृत ने मुख पर हाथ रखकर जमहाई से विकृत स्वर में वसुधीर को संबोधित किया, आर्य के प्रस्थान के लिए आयोजन में विलंब है। सिर हिलाकर वसुधीर ने उत्तर दिया, आर्य सब आयोजन प्रस्तुत है, आर्य का विचार रथ से नहीं अश्व द्वारा यात्रा करने का है, केवल विशेष विश्वास पात्र दास माथुर साथ रहेगा। इंद्रदीप के संकेत से वसुधीर ने रास को पुनः मध्य आधार उपस्थित करने की आज्ञा दी। इंद्रदीप ने स्वयं चषक पूर्ण कर अपने हाथ से रुद्रधीर के मुख से लगाकर कहा, मित्र, अपने दैवी अधिकार और कुल की रक्षा के लिए आमरण संग्राम का व्रत लेकर आज हम मित्र विदा हो रहे हैं, मिलन का दिन शीघ्र आएगा। रुद्रधीर को चषक रिक्त कर देने पर सबने पुनः एक साथ पान किया। विनय शर्मा ने प्रस्ताव किया, सब मित्र नगर द्वार से एक योजन तक रुद्रधीर को विदा देने चले। प्रस्ताव के समर्थन में पान हुआ। पान से रुद्रधीर का अवरुद्ध स्वर प्रकृतस्थ हुआ और फिर कुछ कठोर हो गया। विनय शर्मा को बाहुमूल से थाम कर कक्ष से एक ओर ले जाकर उसने पूछा, कुमारी दिव्या के भविष्य के प्रति तुम्हारा क्या विचार है मित्र? सुरापान से बुझल नेत्र झलक कर विनय शर्मा ने उत्तर दिया, तात के अति वात्सल्य के कारण कुमारी की स्वच्छंदता पर कोई नियंत्रण नहीं। ज्येष्ठ प्रबुद्ध तात की उदारता से प्रश्रय पाकर मुन्नी धर्म के प्रति अपनी प्रवृत्ति के कारण कुमारी की श्रृंखलता को प्रोत्साहित किए। दो सहस्त्र दिवस का समय भी बहुत दीर्घ है, कुमारी को इतने दिन कुल इतने से अवश्य विपन्न होगा। रुद्रधीर ने विनय के नेत्रों में देख प्रश्न किया, क्या सारथी पुत्र पृथुसेन? विनय ने उस दृष्टि से अपने नेत्र हटाकर अस्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, कुछ ऐसा ही अपवाद है। जमहाई लेते हुए बलजीत ने अपने स्थान से रुद्रधीर को संबोधन किया, मित्र, उसा काल में विलंब नहीं है, अंतःपुर में महादेवी आर्य और नारी समाज से विदा लेने में भी समय लगेगा।